Thank you, Kim.
Hare Krishna.
Jai Radha Madhava Kunj Bihari.
What is the song? No, not.
Jai Radha Madhava Kunj Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari.
Something in the speaker sound. Switch off sub speaker, band karo pura. Kiska sound hai itna? Koi fan band karo, dono fan. Wo fan band. Still आ रहा है
हाँ
उसका नहीं यहाँ का सा ठीक है चालू करो
हरे कृष्ण हरे कृष्ण Jai Radha Madhava Kunj Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari. Bijan Vallabha Girivar Dhari. Yashoda Nandana Braj Janaranjana. Yashoda Nandana Braj Janaranjana. Yamuna Tirvana Chariyam. Yamuna Tirvana Chariyam. Radha Madhava Kunj Bihari. Radha Madhava Kunj Bihari. Thank you. గోపిజన వల్లభ గిరివర ధారి యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యశోదానందన బ్రజ జన రంజన జమున తీరావన చారి అమున జమున తీరావన చారి రాధా మాధవ బిహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 ప్రభుపదా జయ ప్రభుపదా ప్రభుపద శ్రీల ప్రభుపద హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ గౌర హరి బోల్
జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టౌత్తరిషద్ శ్రీ శ్రీమద్భయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదకి ఇస్కాన్ బివిటీ ఫౌండర్ ఆచార్య శిల ప్రభుపాదకి జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టౌత్తరిషద్ శ్రీ శ్రీమద్భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శిల ప్రభుపాదకి నామాచార్య శిల హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ్ సె కహు జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్తవృందకి ఉపస్థిత్ భక్తవృందకి జయ ఉపస్థిత్ భక్తవృందకి జయ ఉపస్థిత్ భక్తవృందకి జయ శ్రీ శ్రీ గురు గౌరాంగకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। पिछले कुछ सोमवारों से महाभारत की इस कक्षा में भगवद गीता के ऊपर चर्चा चल रही है, जो महाभारत का सार है। सारी महाभारत की रचना यू कैन स्विच दिस ऑफ। सारी महाभारत की रचना श्रीमद् भगवद गीता को प्रकट करने के लिए की गई, और इसी कारण से अर्जुन को मोह में डाला गया। अर्जुन मोह में पड़कर युद्ध ना करने के लिए कृष्ण से कहते हैं, और फिर कृष्ण उन्हें भगवद गीता सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो भगवद गीता का उद्देश्य अर्थात जब अर्जुन ने समर्पण किया भगवान को, हम लोग दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे पिछली बार, सातवें श्लोक में अर्जुन समर्पण करते हैं भगवान को कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो आप उसे बताइए। प्रभुपाद समझाते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। ऐसी चीज़ें जो थोड़े समय के लिए अच्छी हैं लेकिन लंबे समय के लिए ठीक नहीं हैं। ये केवल थोड़े लोगों को देखे करो, सबको नहीं, बाकी थोड़ा श्रवण भी करने दो। आप ऐसे बांट रहे हो जैसे प्रसाद बट रहा है सबको। तो श्रेयस और प्रेयस, थोड़े समय के लिए जो अच्छी है, और श्रेयस अर्थात लंबे समय के लिए जो अच्छी है। तो अर्जुन ने ये पूछा कि मुझे वो बताइए जो लंबे समय के लिए मेरे लिए अच्छा हो, श्रेयस्कर। ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम तो प्रपन्न। तो समर्पण किया अर्जुन ने, और समर्पण का प्रभाव क्या होता है? समर्पण का प्रभाव होता है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान बिना समर्पण के मिल नहीं सकता। दूसरा प्रभाव समर्पण का होता है कि व्यक्ति शुद्धता के पथ पर चलता है। और तीसरा प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति में फिर से पुनः स्थित हो जाता है। जिस स्थिति से वो गिर चुका है, जिस स्थिति को वो भूल चुका है, उसको वो पुनः प्राप्त करता है। तो इसीलिए समर्पण करना बहुत आवश्यक था। जब तक समर्पण नहीं किया अर्जुन ने, भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। ये दिखलाने के लिए कि भले ही अर्जुन जैसा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो समर्पण नहीं करता है तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, या भगवान ज्ञान देने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे अर्जुन ने और कारण दिए युद्ध नहीं करने के। फिर 11वें श्लोक से आगे भगवान ने ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग उसकी कर चुके हैं। और फिर कैसे 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान कर्मकांड का वर्णन करते हैं। कर्मकांड अर्थात कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा इत्यादि। और फिर उसके बाद भगवान बुद्धि योग या भक्ति योग का वर्णन करते हैं। तो ऐसे सब वर्णन करने के बाद इसी अध्याय के अंतिम भाग में 54 श्लोक नंबर में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने सुना भगवान से कि भगवान ने कहा कि ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान। फिर भगवान ने कहा कि किस तरह अगर तुम युद्ध करोगे तो भी जीतोगे, अगर हार भी गए, मर भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर लेकिन भगवान ने कहा लेकिन बुद्धि इसमें नहीं है कि व्यक्ति इसमें फंसा रहे कि अगर मैं ये करूं तो मुझे ये प्राप्त हो, ये करूं तो ये प्राप्त हो, ये बुद्धि योग नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा अब बुद्धि योग सुनो। भगवान ने बुद्धि योग का इस्तेमाल क्यों किया शब्द का, भक्ति योग क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान कहना चाह रहे थे कि ये जो पहले मैंने बताया ये बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है। ये जो चीजें हैं वो बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, बुद्धिमान लोग ये कार्य करते हैं। अब सुनो, बुद्धि योगम त्विमाम श्रुणो, कि अब सुनो कि बुद्धिमान लोगों के लिए क्या है। तो भगवान ने फिर बुद्धि योग का वर्णन किया या भक्ति योग का वर्णन किया। और इसका वर्णन करने के बाद अर्जुन के मन में विचार आया कि ऐसा कौन व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है। ये आपने जो वर्णन किया कि व्यक्ति को बुद्धि होनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उसके लक्षण तो बताइए, कैसे पहचानेंगे, तो कैसे वो बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, कैसे वो बैठता है, कैसे चलता है, इसको बताइए। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ये जानना चाहता था कि वो कैसे चल रहा है, अर्जुन ये जानना चाहता था कि उसके लक्षण क्या है। क्योंकि व्यक्ति को लक्षणों से पहचाना जाता है। और अर्जुन जानना चाहता था कि क्या लक्षण है ऐसे व्यक्ति के जो बुद्धि योग में स्थित है, जो भक्ति योग में स्थित है, उसके क्या लक्षण है। और भगवान ने बहुत सुंदर लक्षणों का वर्णन किया। पूरा जो अंतिम विभाग 72 श्लोक तक भगवान ऐसे व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं जो भक्त है, जो भक्ति में स्थित है। प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके लक्षणों से जाना जाता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो डॉक्टर पूछता है अच्छा क्या हो रहा है, कहेगा खांसी आ रही है, हाथ में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो उन लक्षणों से डॉक्टर समझता क्या बीमारी है। तो लक्षणों से बीमार व्यक्ति पहचाना जाता है, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, ये लक्षणों से पहचाना जाता है, उसके लक्षण देखकर पहचान लिए जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इन लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बोलना, क्योंकि व्यक्ति का महत्व बोलने से होता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कहा गया है मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः, यावत् च शोभते मूर्खो यावत् किंचित् न भाषसे। बहुत सुंदर श्लोक है। कहा गया है कि जो मूर्ख होता है व्यक्ति, सभा में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बैठा रहता है, मूर्खोपि शोभते, मूर्ख की बड़ी शोभा होती है, कैसे, बड़े अच्छे वस्त्र पहनकर बैठा है, मूर्खोपि शोभते यावत् सभायां वस्त्र वेष्टिता, उस सभा में जहां बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं एक मूर्ख भी आ जाता है और बड़ी शोभा होती है उसकी, क्यों, वस्त्र वेष्टितः, बड़े अच्छे वस्त्र पहने हैं उसने। लेकिन आगे कहा गया है तावच्च शोभते मूर्खो
ये जो मूर्ख व्यक्ति है तावत तब तक उसकी शोभा होती है, कब तक, यावत किंचित न भाषसे, जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता। जैसे ही मुंह खोलता है सारे विद्वान लोग समझ जाते हैं इसके कितना ज्ञान है, चलो हटाओ इसको साइड में। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि बोलने से व्यक्ति के लक्षण पता चलते हैं, उसको ज्ञान है या नहीं है, भक्ति है या नहीं है, बुद्धिमान है या नहीं है। इसीलिए अच्छा है अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको शांत रहना चाहिए, कम से कम उसकी शोभा बनी रहेगी। जब बोलना शुरू करेगा लोग समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कोई बुद्धिमान नहीं है। तो इसी तरह अन्य लक्षणों से भी व्यक्ति को पहचाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है लक्षण, और लक्षण क्या हैं अगर हम भक्ति में इनकी बात करें तो क्या भक्ति में लक्षण अनिवार्य हैं? क्या भक्ति में एक भक्त को कुछ लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि हम लोग उसको देखकर कहें हाँ ये भक्त है ये भक्त नहीं है? भक्ति में क्या लक्षण हो सकते हैं व्यक्ति के? भक्ति को भी, भक्त को भी लक्षणों से पहचाना जाता है। भक्त के क्या लक्षण हैं? जैसे हम बता रहे थे बाहर मूर्ख होता है उसके लक्षण हैं कि उसको ज्ञान नहीं होता, इसी तरह भक्त के क्या लक्षण हैं? भक्त के लक्षण हैं श्री कृष्ण में आसक्ति, भक्त के लक्षण है उसकी वाचा, भक्त के लक्षण है उसका आचरण। ये एक भक्त के लक्षण है। भक्त को वो क्या कहता है उससे पहचाना जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, भगवे वस्त्र धारण करके बैठ जाए, तिलक लगा ले बड़ा सुंदर और वो भक्त हो गया, नहीं, आवश्यक नहीं है। लेकिन आवश्यक क्या है? कृष्ण के प्रति कितना उसका प्रेम है। तो अब जो प्रेम हृदय में है वो कैसे पता चलेगा? हम तो किसी के हृदय में झांक कर देख नहीं सकते कि क्या उसके हृदय में है, वो कृष्ण से प्रेम करता है या द्वेष करता है, या अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता या अहंकार के लिए कार्य कर रहा है, हम तो कुछ नहीं देख सकते। तो फिर कैसे लक्षणों से पता चलेगा कि उसके हृदय में भगवत प्रेम, भगवान के लिए प्रेम है या नहीं? उसके बोलने से। वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, क्या उसकी सारी बातों में कृष्ण का चिंतन है, क्या उसकी सारी बातों में कृष्ण का विषय है? प्रभुपाद कई स्थानों पर इसके महत्व को दर्शाते हैं। प्रभुपाद लिखते, कई स्थानों पर हमने देखा, प्रभुपाद के लीलाओं को हमने सुना कि एक स्थान पर उनके एक शिष्य थे जो पूरा समय मंदिर के व्यवस्थापन में लगे रहते थे, उनको समय नहीं मिलता था कुछ और करने के लिए, पूरा समय मंदिर का व्यवस्थापन, कैसे सेवाएं चलें, कैसे क्या हो। तो प्रभुपाद से उन्होंने जाकर पूछा कि ये कैसे मेरी भक्ति हो रही है, मैं तो चिंता, मेरे दिन भर यही चिंता रहती है, कृष्ण का चिंतन नहीं होता है। प्रभुपाद ने कहा यही कृष्ण भावनामृत है, हर समय ये सोचना कि कैसे कृष्ण का मंदिर ठीक चले, कैसे कृष्ण का प्रचार बढ़े, यही कृष्ण भावनामृत है, यही समाधि है। अन्य एक भक्त थे जो सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, वृंदावन मंदिर बन रहा था और सन्यासी होते हुए, वृंदावन में होते हुए एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, राधे राधे या कृष्ण का नाम लेना चाहिए? लेकिन उनकी सेवा थी कि देखना कितने सीमेंट बैग आए, कितना स्टील आया, कितनी रेती आई, कितनी ईंटें आई, बस वो दिन भर उसी में लगे रहते थे कि आया कि नहीं आया, अभी लाना है, फिर से मंगाना इत्यादि। तो उन्होंने भी प्रभुपाद से प्रश्न किया कि मैं एक सन्यासी हूं, मुझे तो, और वो देखते थे कि दरवाजे के बाहर, जो वृंदावन मंदिर के बाहर सड़क है, वहां से कई सन्यासी रोज सुबह, आप देखिए आज भी वृंदावन में सन्यासी सुबह सुबह निकलते हैं, साधु निकलते हैं, तो साधुओं की टोलियां निकल रही हैं और सब राधे राधे कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और ये सीमेंट सीमेंट स्टील रेती कर रहे हैं, राधे राधे याद नहीं है। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो राधे राधे करना चाहिए और मैं सुबह से स्टील सीमेंट इसमें लग जाता हूं। प्रभुपाद ने कहा यही तुम्हारी समाधि है, क्योंकि तुम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे ये सोच रहा है कि कैसे कृष्ण का प्रचार बढ़ सकता है, वो शुद्ध भक्त है बस, क्योंकि उसकी चेतना केवल कृष्ण में लगी है, उसको और कोई चिंतन नहीं है। तो ऐसे लक्षणों से तो व्यक्ति क्या बोलता है उससे जान सकते, कैसे आचरण करता है। एक भक्त के लिए अनिवार्य है वैष्णव आचरण, उससे उसकी भक्ति का पता चलता है। क्योंकि वैष्णव आचरण जब हम करते हैं बड़ी अच्छी तरह से, तो हमारा प्रेम हमारा आदर श्री विग्रह के प्रति प्रकट होता है। तो इसीलिए ऐसे कुछ लक्षणों से भक्त को पहचाना जा सकता है, उसकी भक्ति, उसकी बातें, उसका प्रेम कृष्ण के प्रति, उसका समर्पण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति, ये उसकी भक्ति को दर्शाता है। तो इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप लक्षण बताइए ऐसे व्यक्ति के, हम कैसे पहचाने कि ये भक्त है। तो भगवान ने लक्षण बताने शुरू किए, जो जो प्रश्न पूछे थे भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। भगवान ने कहा पहला लक्षण उस व्यक्ति का है कि वो कभी विचलित नहीं होता, दुख में और सुख में वो समान बना रहता है, उसको भौतिक जगत के तीन ताप सताते नहीं है, अगर दुख में भी सुख में भी वो समान रहता है, और उसको उसका जो मन है वो वश में रहता है। भगवान अब एक एक लक्षण बता रहे हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इन लक्षणों का। वो कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति दुख में और सुख में समान रह सकता है। साधारणतः व्यक्ति सुख में सुखी हो जाता है, दुख में बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भक्त है तो वो ये जानता है कि ये जो मेरे जीवन में अगर बहुत दुख आ गया तो वो ये समझ लेता है कि मेरे कर्मों के कारण तो बहुत बड़ा दुख आना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा है थोड़ा सा दुख आ गया, खुश हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हत्या की है, अब हत्या करने का उसको तो दंड मिलना है कि उसको फांसी होनी है, लेकिन जो जज है वो ठीक से, क्योंकि उसको प्रमाण नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं, तो कहता है कि ठीक है इस व्यक्ति को 2 साल की सजा दे दो। तो अब वो व्यक्ति खुश होगा या दुखी होगा बताइए, जिसको पता है कि मैं पकड़ा गया हूं मुझे फांसी लगेगी, लेकिन उसको 2 साल की सजा दे दी जाती क्योंकि उसको सबूत नहीं मिलते, तो कहते ठीक है इसको 2 साल की सजा दे दो। अब वो व्यक्ति खुश होगा या दुखी होगा बताइए, खुश होगा, बहुत खुश होगा, उसके घर वाले लड्डू बांटेंगे, बच गए हमारे, क्यों मरने वाला था। तो देखिए दंड मिलने पर भी व्यक्ति खुश होगा। इसी तरह भक्त है कि कष्ट आते हैं वो खुश होता है, क्यों, अरे बहुत कष्ट आने वाले थे, भगवान की कृपा है बड़े थोड़े से कष्ट आए, मृत्यु मृत्यु दंड मिलने वाला था, 1-2 साल की सजा मिल गई है, व्यक्ति खुशी खुशी काट लेता है उस सजा को। तो इसी तरह ये दुख में सुखी इसलिए रहा जा सकता है अगर हम हर चीज को भगवान की अनुकंपा माने। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। ऐसा व्यक्ति जो हर अवस्था को भगवान की कृपा मांगता है, धन्यवाद देता है भगवान को हर अवस्था में, अधिकारी हो जाता है मुक्ति का, मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको अधिकार मिल जाता है मुक्ति करने का। तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसी स्थिति में रहें, समभाव बनाए, दुख हो ठीक है, सुख हो वो भी अच्छा। तो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होता। जब सुख आते हैं तो वो सोचता है कि भगवान मुझे सुविधा दे रहे हैं ताकि मैं उनकी ज्यादा सेवा कर सकूं, बस। अर्थात वो सुख को अपने श्रेय नहीं देता कि ये मेरे कारण है। साधारणतः व्यक्ति जब उसके जीवन में किसी चीज को प्राप्त कर लेता है तो उसका श्रेय अपने आप को देता है, मैंने बड़ी मेहनत की, रात दिन जग कर इसको किया। और जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो दोष भगवान को देता है, क्या भगवान क्या किया, कितने रविवार कितने सोमवार इस्कॉन मंदिर में गया था, हुंडी में 10 रुपया भी डाला था आपकी, कुछ नहीं फायदा है ना, क्या लाभ हुआ। तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं तो उसमें वो कुछ स्थान बताते हैं कि जहां भगवान रहें या रहते हैं, और उनमें से वो एक स्थान बताते हैं कि मतलब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान वन में चले गए रामचंद्र जी और ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं वहां पर कि मैं कहां पर रहूं, बताइए मैं कहां रहूं। तो ऋषि मुनि उनसे कहते हैं भगवान ये बताइए कि आप कहां नहीं हैं, आप पूछ रहे हैं कहां रहे, हम पूछ रहे हैं आप कहां नहीं हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम आपको स्थान देते हैं रहने के लिए। तो उस समय ऋषि मुनियों ने कुछ स्थान दिए और उनमें से एक स्थान उन्होंने दिया कि आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिए जो सारे असफलताओं का दोष अपने आप को देता है और सारी सफलता का श्रेय आपको देता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। अर्थात भक्त कौन है, भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। तो भक्त कौन है जो सारी गलतियों का असफलताओं का दोष अपने ऊपर लेता है, मेरे कारण हुआ, मैं भक्ति नहीं कर पाया, मैं सेवा नहीं कर पाया। लेकिन अगर कोई कार्य हो जाता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर देता है, वो मंदिर बना देता है, कुछ और कर देता है, श्रेय भगवान को देता है, मेरी क्या योग्यता, भगवान की कृपा है, भगवान भेज रहे हैं, भगवान ने किया, प्रभुपाद ने दिखलाया। जिस समय प्रभुपाद के शिष्य बनने, प्रभुपाद ने बनाने शुरू किए, बहुत सारे शिष्य उनके पास आ गए, तो प्रभुपाद ने उसका श्रेय अपने आप को नहीं दिया कि देखो मेरी कितनी योग्यता है, कोई और बना नहीं पाया, मैंने इतने सारे शिष्य बना दिए, नहीं। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज भेज रहे हैं आप सबको मेरी मदद करने के लिए, श्रेय उन्होंने अपने गुरु को दे दिया, फिर ये परंपरा में श्रेय दे दिया जाता है। इसीलिए भक्ति में भी अहंकार से बचने का बहुत सुंदर सूत्र है, हमें जब किसी चीज का श्रेय मिले हम आगे दे दें, अपने गुरु को दे दें और वो अपने आगे दे दें, उनके गुरु करते करते कृष्ण तक पहुंच जाए। ये बहुत सरल मार्ग है अहंकार से बचने का, अन्यथा भक्ति में अहंकार बहुत जल्दी आता है। अब आप बताइए बाहर कौन, आप ऐसे कहां मिलता है कि एक व्यक्ति इतने ऊंचे आसन पर बैठा है, उसको हार वार पहनाया हुआ है और एक घंटे तक जो बोलता रहे चुपचाप सब सुनते रहते हैं। इतने तो राजनेताओं की रैली में भी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उनको तो सबको पैसा दिया होता है। राजनेताओं की जो रैली होती है उसमें तो गांव गांव से ट्रक भरकर लाए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, चलो आपको खाना मिलेगा, 50 रुपया 100 रुपया देंगे, तो वो लोग बैठे रहते हैं, धूप है कुछ भी, और अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है कड़ी धूप में भी इनको सुनने के लिए 10,000 लोग बैठे थे। वो कड़ी धूप में उनको सुनने नहीं बैठे थे, तो पैसा मिला था बैठे हुए थे, क्योंकि चले जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बस उतना है ना। लेकिन भक्ति में बड़ा, हम लोग तो कोई पैसा नहीं देते फिर भी बैठे रहते हैं सुनने, तो बड़ी जल्दी अहंकार आता है, देखो मैं कितना श्रेष्ठ हो गया, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। या फिर कभी कोई थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता है तो लोग आकर उसकी तारीफ करते, प्रभु जी आप क्या गाते हैं, आपका सीडी निकालिए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस व्यक्ति को भी लगता है बहुत बढ़िया, चलो बजाओ, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं लाओ, एक सीडी निकालेंगे। तो ये अहंकार बड़ी जल्दी आता है भक्ति में, व्यक्ति भूल जाता है कि ये जो श्रेय है, ये जो श्रेय हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। जैसे हमने आपको कई बार एक कथा सुनाई है गधे की, हमेशा याद रखिए, अगर अहंकार आ जाए हृदय में, एक गधे के पीठ पर भगवान के विग्रह को रख दिया गया, आसन रख दिया गया भगवान का, और गधे को खड़ा कर दिया गया। अब पीठ पर उनके राधा कृष्ण हैं, भगवान का आसन है, और जो लोग आ रहे हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। अब गधा तो देख नहीं पा रहा पीछे क्या है, तो गधा तो देख रहा है कि मुझे सब प्रणाम कर रहे हैं। गधे का अहंकार बढ़ता गया, बढ़िया, और जिसको देखो जो गांव में आ रहा है सब उसको प्रणाम कर रहे हैं। अब बताइए गधे का कितना अहंकार बढ़ गया। तो जब बहुत अहंकार बढ़ गया, उसने सोचा क्या मेरी पीठ पे रखा हुआ है, अरे मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, गांव के सारे लोग आके मुझे प्रणाम करते हैं और मेरी पीठ पर भार रखा है, गिरा दिया नीचे उसने। और जैसे ही गिराया, वही लोग जो प्रणाम कर रहे थे डंडा लेकर उसको मारने लगे, बड़ी जोर जोर से मारा, सारा अहंकार छू। जिस दिन हमें हृदय में अहंकार आ जाए कि मैं बड़ा अच्छा प्रवचन देता हूँ, मैं बड़ा अच्छा सेवा करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करता हूँ, मैं बड़े अच्छे हार बनाता हूँ, या जो भी यहाँ अहंकार आ जाए, ये कथा याद कर लेनी चाहिए। वो गधा भूल गया कि लोग प्रणाम उसे नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान जो उसके पीठ पर बैठे हैं इसीलिए प्रणाम है। इसी तरह हम सबको याद रखना चाहिए कि जो आदर सम्मान हमें मिल रहा है, इसीलिए नहीं कि हमारी योग्यता है, हम तो केवल उस गधे की तरह हैं जिसने अपनी पीठ पर भगवान को बिठा रखा है। हमारी जिह्वा पर अगर भगवान का नाम है तब आदर सम्मान मिलता है। तो आदर सम्मान आपकी जिह्वा को नहीं मिल रहा, आपके शरीर को नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा, भगवान के नाम को मिल रहा। इस चीज को व्यक्ति भूल जाता है तो फिर डंडे पड़ते हैं। तो इसीलिए अहंकार भक्ति में बहुत जल्दी आता है, तो व्यक्ति को ये चीज समान रखनी चाहिए। तो भगवान ये पहला लक्षण देते हैं भक्त का कि वो समभाव रखता है, सुख में दुख में कोई चिंता नहीं उसको। फिर आगे वो कहते हैं कि वो अपने मन को बड़े वश में रखता है। भक्त का दूसरा लक्षण देते हैं भगवान कि उसका मन बड़े वश में होता है। अभी देखिए, हम लोग जब इस जगत में रहते हैं, मन को वश में करना बहुत कठिन है, भागता रहता है मन। कृष्ण कथा भी सुनते रहते हैं तो मन कहीं और रहता है, हमारे ध्यान इधर उधर जाता है, हम सोचते हैं कितने बजे वापस जाएंगे, क्या होगा, वापस जाते समय सब्जी कौन कौन सी खरीदनी है, या खैर जो भी है, उस सब का ध्यान हमारा ज़्यादा रहता है हमारा मन। प्रवचन क्या चल रहा है वो तो ठीक है, प्रभु जी तो हर सोमवार को बोलते ही हैं, शुरुआत में थोड़ा सुन लिया बस, तो ये सारा मन में चिंतन शुरू हो जाता है। मन को वश में रखने का अर्थ क्या है, भगवान कहते अनासक्त होना चाहिए उसको। आसक्ति क्या है, आसक्ति की एक बड़ी सरल परिभाषा है, जब व्यक्ति सब चीजों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना चाहता है उसे आसक्ति कहते हैं, और जब वो उन सारी चीजों को भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उसको वैराग्य कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है आसक्ति और विरक्ति की। जब हम सारी चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करें, तो अब हरेक भक्त को ये देखना चाहिए कि क्या मैं जो मुझे सुविधा मिली है, चीजें मिली, उनको भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या अपने लिए। अगर अपने लिए कर रहे हैं आसक्त हैं, लेकिन अगर उन सुविधाओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए है वैराग्य है, विरक्ति है। तो भगवान ये लक्षण बताते हैं कि कैसे मन को वश में करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं मन को वश में करने के लिए, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। वो कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, सुख की बात हो रही है, मन को शांत करने की बात हो रही है, मन को जो शांत करता है वो सुख प्राप्त करता। कैसे, और सुंदर ये श्लोक है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। कि अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है तो उसको शांत होना चाहिए। अशांत व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? मन में बड़ी अशांति हो वो कभी सुखी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं सुख के लिए शांत होना, शांत होने के लिए मन को वश में रखना है, भगवान कहते हैं। वैसे जब हम लोग ये बात सुनते हैं कि भगवान ने बड़ी सरलता से कह दिया कि मन को वश में रखना है, इतना सरल है, आगे चलकर छठे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहेंगे इतना सरल नहीं है आप जो कह रहे हैं भगवान से कि मन को वश में रखना। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म, अर्जुन कहते हैं तो बड़ा बड़ा बलवत दृढ़म मतलब बड़ा ढीठ है और चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण, चंचल जैसे कभी एक जगह पे नहीं रहता। लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला, क्योंकि वो कभी एक जगह पे नहीं रहती, आज इसके पास कल उसके पास, एक ही जगह पे वो फिक्स है, वहां से हिलती नहीं है, और वो है नारायण के चरण कमल, अन्यथा बाकी सब जगहों से वो जाती रहती है इधर उधर। तो मन भी ऐसे चंचल है। तो अर्जुन प्रश्न करता है छठे अध्याय में कि आपने कहा कि मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सुख का मार्ग यही है, सुख प्राप्त करना है, शांति आएगी, शांति कैसे आएगी, मन को वश में करो, और मन को वश में कैसे करना है वो भी भगवान बताते हैं। लेकिन छठे अध्याय में जो भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने कि असंभव है ये मन को वश में करना, मैं अपने बल पर बहती हुई तेज बहती हुई हवा को वश में कर सकता हूं कि मन को नहीं कर सकता। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, जो तुमने कहा एकदम सही है, उसमें कोई संशय नहीं है, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान कहते अभ्यास करो और वैराग्य लाओ हृदय में, आराम से आप मन को वश में कर लो। लेकिन यहां इस दूसरे अध्याय में भगवान एक और मार्ग देते हैं मन को वश में करने का। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा कि अगर सुख चाहिए तो शांति आनी चाहिए। शांति कब आएगी? जब मन वश में है। जिस व्यक्ति की मन और इंद्रियां वश में नहीं है वो कभी शांत नहीं रह सकता, हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि इंद्रियां उसे खींचती रहती हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक स्थान पर कि मान लीजिए एक व्यक्ति की 5 पत्नियां हैं और उसको 5ों पत्नियां खींच रही हैं, क्या होगा उसका? सुखी होगा? कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रही है कि मेरे कपड़े कहाँ, नए कपड़े नहीं लाए, कोई उसका गला पकड़कर खींच रही है कि नेकलेस लाने के लिए कहा था कहाँ पर है, ऐसे 5 पत्नियां सब तरफ से खींच रही, बेचारा थक के घर पे आया है। और इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां हैं, अगर मन शांत नहीं है तो फिर मन को वश में करना असंभव है। तो इंद्रियां और मन को वश में करने का भगवान मार्ग बताते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करो। नास्तिक बुद्धि रयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, ऐसी बुद्धि जागृत करो जो दिव्य स्तर पर है। जब तक हमारी बुद्धि भौतिक रहेगी, जब तक हम लोग बस यही चीज प्राप्त करते रहेंगे कि बस इस जगत में सब कुछ मिल जाए, जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां, जब तक ये भाव है कुछ नहीं हो सकता। भगवान कह रहे दिव्य बुद्धि, इसके परे जाओ, असली बुद्धि में आओ, कम से कम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि मतलब क्या है? जहां पर हम ये जान सके कि सही क्या है और गलत क्या है, भेद करने की भावना, सही चीज को जानने की भावना, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, एक भेद करना अच्छे और बुरे में, और दूसरा निर्णय लेना। जैसे मन है तो मन में 3 चीजें होती हैं, मन में पूर्व के अनुभव होते हैं, हमारे जो पूर्व काल में हमने अनुभव किए उनकी छाप होती है, मन में असंख्य विचार होते हैं और अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। ये 3 चीजें मन का लक्षण है, और बुद्धि के 2 लक्षण हैं, भेद करना और निर्णय लेना। लेकिन जब बुद्धि दिव्य स्तर पर नहीं है तो ना वो भेद कर पाती है ना सही निर्णय ले पाती है। जब हम जानेंगे ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भेद दिव्य बुद्धि को जागृत करो, और दिव्य बुद्धि को जागृत करने का मार्ग क्या है, सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान के नाम का सतत कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य बुद्धि को जागृत करता। बड़ा सरल मार्ग है। हम सब सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हैं, हिमालय में जाना पड़ता है, बड़ी कड़ी तपस्या, एक पांव पर खड़ा होना पड़ता है। हम लोग सुनते थे बचपन में, हमें खुद याद है, बचपन में हम लोग ये सुनते थे भगवान को प्राप्त करना है तो हिमालय में जाना, एक पांव पे खड़ा होना है, कुछ खाना पीना नहीं है। तो इसीलिए हमारे मन में तब से था कि भक्ति हमारे लिए है नहीं, भगवान हमारे लिए है नहीं, क्यों, वो तो योगियों के लिए हैं, वो लोग जाके प्राप्त करें। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े योगी कहां भगवान प्राप्त हुए, विश्वामित्र मुनि उदाहरण है ना, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, अकेले खड़े होकर बड़ी कड़ी तपस्या, सारी इंद्रियों को मन को वश में किया हुआ है उन्होंने, और क्या हुआ, मेनका के घुंघरू की झनकार, हरि बोल, खत्म, सारी तपस्या समाप्त, सब कुछ समाप्त। सौवरी मुनि, वो तो चलो विश्वामित्र बाहर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तो पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं देखना चाहता, केवल भगवान का स्मरण। क्या हुआ, मछलियों को देख लिया आपस में प्रेम करते हुए, बाहर आए 50 राजकुमारियों से शादी कर ली, बताइए, एक आदमी नहीं है। तो क्या इनकी तपस्या का लाभ है, विश्वामित्र मुनि। और विश्वामित्र मुनि पहली बार मेनका से हार गए, काम वासना के अधीन आ गए, सारी तपस्या चली गई, कई सालों के बाद याद आ रहे, अरे क्या कर दिया मैंने, छोड़ दिया मेनका को, मेनका भी चली गई अपने वापस जिस काम के लिए आई थी, काम पूरा हो गया, तपस्या भंग हो गई, और विश्वामित्र मुनि भी चले गए, एक जो पुत्री थी उसको तो जंगल में छोड़कर चले गए, फिर से तपस्या करने लगे, बड़ी तपस्या, इस बार रंभा आई। तो मुनि ने कहा था कुछ भी हो काम के वश में नहीं आऊंगा। रंभा आई, रंभा ने बड़ा आकर्षित करने का प्रयास किया, विश्वामित्र मुनि ने आंखें खोली, क्रोध कर दिया, तुम पत्थर हो जाओ, उसको पत्थर बना दिया, लेकिन क्रोध कर दिया, फिर समाप्त। तो इसीलिए ये जो हम लोग देख रहे हैं कि भगवान को पाने का मार्ग ये क्या है, मन को वश में करना, भगवान से जुड़ना, तो क्या हमें भी तपस्या करनी है, हमें भी, और करें भी तो लाभ क्या है। विश्वामित्र मुनि ने जंगल में तपस्या की, पराजित हो गए, सौवरी मुनि ने पानी के अंदर तपस्या की, पराजित हो गए, ऐसे तो कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण है दो असुरों का, जिन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की, और कड़ी तपस्या, उनको बड़ा प्रेम था, दोनों भाई थे, बड़ा प्रेम था आपस में, और कड़ी तपस्या करके उन्होंने वर प्राप्त किया कि हमें कोई दूसरा नहीं मार पाए, अगर कोई मारेगा तो हम ही आपस में एक दूसरे को मारे, नहीं तो कोई नहीं मार, और एक दूसरे में इतना प्रेम था कि मारने का तो सवाल ही नहीं। और उनको आशीर्वाद, ब्रह्मा जी तो आंख बंद करके आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्मा जी को तो चिंता है नहीं, भगवान कहें चिंता करने के लिए, आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तो कोई नहीं मार पाएगा उनको, अगर मारेंगे तो आपस में लड़ेंगे तभी मरेंगे, और आपस में लड़ते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता था लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, तो बड़े प्रेम से रहते थे, आपस में लड़ते नहीं थे, और इतने बड़े असुर सब जगह हंगामा कर रहे हैं, अब मारा कैसा जाए। तो देवताओं ने एक युक्ति की, बड़ा सरल है, दोनों के बीच में एक अप्सरा को भेज दो, बस। तो वो आ गई, एक ने कहा मैं इससे विवाह करूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं करूंगा, अरे तुम पीछे बैठो मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, हो गया बस, झगड़ा हो गया, मार डाला दोनों ने एक दूसरे को। तो ये सारी चीजें ये मन को जरा सा वश में नहीं कर पाते, तो फिर क्या मार्ग है। विश्वामित्र मुनि नहीं कर पाए, सौवरी मुनि नहीं कर पाए, और कई उदाहरण हैं शास्त्रों में, तो क्या मार्ग है, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का उदाहरण भगवान ने क्यों प्रकट करवाया, इसका कारण यह है कि वो तुलना दिखा रहे थे, देखो एक तरफ है विश्वामित्र मुनि, एक तरफ है सौवरी मुनि, और कई कई ऐसे महान महान बड़े तपस्या करने वाले, और दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जिसका जन्म भी कोई बहुत बड़े कुल में नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, कोई तपस्या बड़ी नहीं, क्या किया उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो विश्वामित्र मुनि हजारों वर्ष की तपस्या के कारण एक अप्सरा के घुंघरू की झनकार से अपनी तपस्या को तोड़ बैठे, सौवरी मुनि कई वर्ष पानी के अंदर तपस्या करने के बाद भी एक मछली को देखकर अपनी तपस्या भूल बैठे, वहीं हरिदास ठाकुर केवल हरि नाम लेकर रात्रि के समय अकेले में गांव के बाहर कोई नहीं आसपास, आई हुई वेश्या, बहुत सुंदर वेश्या जो उनका उनका भक्ति को भंग करना चाहती थी, उससे हारे नहीं। 3 दिन तक उसने प्रयास किया, रोज आती। हरिदास ठाकुर कहते बस बस अभी जब पूरा हो जाएगा फिर जो तुम कहोगी करेंगे, ठीक है बैठे बैठे बैठे। 3 दिन बाद उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान के नाम को सुन रही थी, शुद्ध नाम हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के मुख से। शास्त्रों में कहा गया है लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, और यहां तो 3 रातों तक लगातार हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त का न केवल संग, उनके मुख से हरि नाम सुन रही थी। निश्चित था उसका मुक्त होना और शुद्ध होना। शुद्ध हो गई, क्षमा याचना की, समर्पण किया, और इतना ही नहीं उसके बाद उसने अपना जो कुछ था सब दान कर दिया, एक वैरागिनी हो गई, और हरिदास ठाकुर ने उसको दीक्षा दी कि ये लो यहां बैठो, नाम जप करो, तुलसी की सेवा करो, और वो वहां से चले गए। हरिदास ठाकुर ने कहा पहले ही दिन में जा सकता था। कई बार जब ये लीला कहते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं 3 दिन तक हरिदास ठाकुर कर क्या रहे थे, पहले दिन चले जाते, उनको पता था कल फिर आने वाली है तो रुके क्यों। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तो पहले दिन चला जाता लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए रुक गया, अब तुम्हारा उद्धार हो गया अब मैं जा रहा। तो वो चाहते थे उसको भक्त बनाना। ये प्रचारक का भाव है। जब वेश्या उनके पास आई तो हरिदास ठाकुर ने एक सुंदर युवती नहीं देखी, हरिदास ठाकुर ने भोग की वस्तु नहीं देखी, हरिदास ठाकुर ने एक दुखी जीव को देखा, हरिदास ठाकुर ने एक शरीर में जकड़े हुए अज्ञानी जीव को देखा, और उन्होंने कहा इसका उद्धार करना, ये भक्त है, और ये हुआ केवल हरि नाम के शक्ति से। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, भगवद गीता में अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है इसको, केवल मेरा कीर्तन करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भागवत में भी भगवान कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भावोनुकीर्तनात्, कि श्रवण करें भगवान के कथा को, भगवान के विग्रह का दर्शन करें, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् उनका ध्यान करें, और मई भावोनुकीर्तनात् भावपूर्ण कीर्तन करें। महाप्रभु ने भी यही चीजें दी हैं, कृष्ण नाम जीवे दया, वैष्णवों की सेवा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और क्या करना है जीवन में, महाप्रभु ने भी इसी को दिया। जीवों पर दया अर्थात प्रचार करना, कृष्ण नाम अर्थात स्वयं को शुद्ध करना। तो ये नाम के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए मन को वश में रखने का सबसे सरल सबसे प्रभावी मार्ग इस कलयुग में है हरि नाम का उच्चारण, और बड़ा सरल है। तो भगवान को पाने का मार्ग है हरि नाम का उच्चारण। ऐसा वर्णन है कि जब व्यक्ति हरि नाम लेने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, तो धीरे धीरे उसके सामने भगवान के गुण, भगवान की रूप, भगवान की लीलाएं सब प्रकट हो जाती। हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कल्पना करते हैं कृष्ण कैसे दिखेंगे अगर मेरे सामने आए, कोई आवश्यकता नहीं है कल्पना करने की। नाम कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान सामने प्रकट होंगे ही, ये निश्चित है, भगवान का रूप प्रकट होगा। भगवान बाध्य हो जाएंगे आपके प्रेम से आपके सामने प्रकट होने के लिए। इसीलिए हमें कोई कल्पना की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है शुरुआत की अवस्था में जब भक्त के अंदर बड़ा जोश होता है, उसको हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, थोड़े समय बाद जोश चला जाता है, कृष्ण नहीं दिखते, वो अलग बात है। हमने भी जब भक्ति प्रारंभ की थी, हमने जप करना शुरू किया तो हम अगरबत्ती सामने जलाकर जप किया करते थे और जो अगरबत्ती से धुआं निकलता था हम उसमें कृष्ण इमेजिन करते थे, ये कृष्ण की शेप आ रही है, कृष्ण बांसुरी पकड़ कर खड़े हैं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। बस नाम जप करना है, धीरे 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 नाम ही गुण रूप लीलाएं सबको प्रकट करेगा। ये नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसीलिए सारी शक्तियां हैं उसमें भगवान की। नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्तियां भगवान ने उसमें दे दी, केवल नाम उच्चारण। कितना सरल मार्ग है मन को भगवान में लगाने का। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, आप दुनिया में बाहर जाइए, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, लोग इतना लाखों रुपया खर्चा करते हैं कि कैसे मन को वश में कर सकते हैं। सरल उपाय, मन त्रायति इति मंत्र, मंत्र का उच्चारण कीजिए, मन कतरा मन तर जाएगा। तो इस तरह भगवान ये बताने लगे कि कैसे एक भक्त के लक्षण है, तो कैसे मन को वश में करना चाहिए। तो मानो अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये तो ठीक है नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, ये भी भगवान ने बताया, लेकिन ये तो बताइए कि क्या प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो भगवान एक उदाहरण देते हैं कछुए का। भगवान ने दो तीन उदाहरण दिए मन और इंद्रियों को वश में रखने का, एक नाव का उदाहरण दिया, एक कछुए का उदाहरण दिया। तो कछुए का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जो कछुआ होता है वो उसकी जो अंग होते हैं शरीर के साधारणतः बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई खतरा देखता है वो सारे अंगों को अंदर कर लेता है, फिर केवल एक पत्थर रह जाता है बस। आप उसके ऊपर खड़े होकर नाचिए, कुछ भी नहीं होगा उसको। तो भगवान कहते हैं इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, जब आवश्यकता है तो वो अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करे भगवान की सेवा के लिए, और जब आवश्यकता नहीं है तो उनको व्यर्थ में उपयोग ना करे इंद्रियों का। अर्थात हमारी जो आंखें हैं ये काम वासना के प्रवेश का द्वार है, या लोभ के मोह के प्रवेश का द्वार है, इसको शुद्ध करना है भगवान के दर्शन के द्वारा। जैसे हम कई बार एक श्लोक को कहते हैं भागवत का, जो बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नलकूबर और मणिग्रीव के द्वारा ये कहा गया, दसवें स्कंद में आता है, दामोदर लीला के अंत में, जहां उन्होंने प्रार्थना की भगवान से और वो कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयो ने स्मर्त्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुना। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो हमें ऐसे नहीं, वो मांगते हैं कि हमें अभी आपके धाम ले जाइए, हमें मुक्त कर दीजिए, नहीं वो नहीं मांगते। वो बहुत सुंदर बात मांगते हैं, वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने, कि हे कृष्ण आप केवल इतना कीजिए कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों को गाती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और जो हमारे कान हैं वो सतत आपकी कथाओं को सुनते रहे। एक लक्षण इस ऐसे व्यक्ति का जो मन को वश में कर लेता है, भगवान देते हैं नदी का उदाहरण देकर इन श्लोकों में। वो कहते हैं कि वो वैसा व्यक्ति होता है समुद्र की तरह, कि उसमें नदियां आकर गिरती रहें लेकिन समुद्र में कभी उफान नहीं आता। वर्षा के समय देखिए नदियों में कितना उफान आ जाता है और कितना पानी समुद्र में गिरता है, लेकिन समुद्र को कुछ नहीं होता। इसी तरह इच्छाओं की नदियां हमारे मन में कितनी ही गिरे लेकिन मन को समुद्र बना लेना चाहिए। और वो कैसे बना सकते हैं? वो व्यक्ति बना सकता है जिसने अपने कान को समुद्र के समान बना लिया है, जिसमें कृष्ण कथा की नदियां गिरती रहती हैं लेकिन उसका कान कभी नहीं कहता कि बस महाराज 8 बज गए। वो व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। तो इसीलिए मन को वश में करने के लिए वो दूसरी चीज मांगते हैं कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदैव आपके गुणों को गाती रहे और कुछ हमारे मुख से नहीं निकले। आप सोचिए कितना अच्छा वो व्यक्ति का भाव होगा अगर हमारे जीवन में ऐसा हो जाए कि हमारे मुख से कृष्ण के अलावा और कोई चीज, केवल कृष्ण के गुण निकले, कृष्ण की कथा निकले। और जीवन में क्या चाहिए? दूसरा वो कहते हैं श्रवणो कथायां, कान में केवल आपकी कथा की नदियां गिरती रहें, हम कभी नहीं कहें कि बस बहुत हो गया। जैसे परीक्षित महाराज, वो जब कथा सुन रहे थे तो उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया, इसको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं आप चिंता नहीं करना, आप रुकिए मत, बोलते रहिए, मुझे ना प्यास लगी ना भूख लगी है और महत्वपूर्ण बात नींद भी नहीं आ रही है। हमारी इस्कॉन परंपरा में परंपरा तो नहीं कहना चाहिए, कह रहे इस्कॉन संस्था में कई लोगों ने अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है कि भागवत कथा सुनी होते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। परीक्षित महाराज को भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, सतत सुन रहे हैं 7 दिन तक लगातार कृष्ण कथा। तो इसीलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, आप जब इस चीज को सुने, केवल एक कल्पना मात्र कर लीजिए कि एक दिन हम ऐसे हो जाएं, तो क्या भाव होगा हमारा, क्या स्थिति होगी, मन में कौन सी अशुद्धता रह जाएगी। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां हस्तौ च कर्मसु, और जो हाथ हैं अर्थात इंद्रियां हैं वो आपके सेवा में लगे। कर्मसु, मैं हाथों से आपका श्रृंगार कर सकूं, आपके मंदिर मार्जन कर सकूं, आपके लिए भोग बना सकूं, आपके लिए हार बना सकूं, आपके लिए कुछ भी सेवा कर सकूं। हस्तौ च कर्मसु मनः, और मन कहां जाए मेरा? मनः तव पाद योने, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे। राजा कुलशेखर ने यही प्रार्थना की है ना, बहुत सुंदर प्रार्थना जिसको प्रभुपाद बारंबार दोहराया करते थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निवधो स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर कहते बहुत सुंदर प्रार्थना है कि हे कृष्ण, मेरा जो मन है उसको अभी इसी समय आपके चरण कमलों में लग जाने दीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, मेरा मन ये राजहंस की तरह बस आपके चरण कमलों में लग जाए पूरी तरह। क्यों? प्राण प्रयाण समये, जब प्राण निकलेंगे शरीर से, कफवात पित्तये, ये जो कंठ है ये बंद हो जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, कफवात पित्त से भर जाएगा, कंठावरोध निवदो स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण नहीं आएगा, इसीलिए अभी इसी समय मेरे मन को आपके चरणों में लगाने दीजिए। और यही प्रार्थना वो लोग कर रहे हैं, मनः तव पाद योने। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, राजा कुलशेखर की भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो मन को ऐसे भगवान में लगा दीजिए। और फिर वो लोग क्या कहते हैं, मनः तव पाद योने शिरः, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पाद योने स्मर्त्याम शिरस, जो मेरा सिर है वो क्या हो उसको, तव निवास जगत प्रणामे, जगत की हर वस्तु को हम प्रणाम कर सकें ये सोचकर कि आपका सब में वास है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सदैव आपको प्रणाम करें, जो बड़े बड़े देवता हैं उनको प्रणाम करें, आपके भक्तों को प्रणाम करें, हर एक व्यक्ति को प्रणाम करें, हर एक वस्तु को प्रणाम करें। अर्थात ये नम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे हृदय में हमें ये भाव हो कि हम सबसे निम्न हैं। क्योंकि व्यक्ति प्रणाम किसको करता है? जब वो सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ हैं तब तो प्रणाम करता है। अगर जगत की हर वस्तु को प्रणाम करेंगे मतलब ये सोचेंगे कि जगत की हर वस्तु मुझसे श्रेष्ठ है, मैं एक बड़ा ही तुच्छ जीव हूं। इसीलिए मेरा सर शिरस तव निवास जगत प्रणामे, जगत की हर वस्तु को मैं प्रणाम कर सकूं। और अंत में बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, दृष्टि, दृष्टि कहां हो मेरी? मूवी थिएटर में हो, फिल्म स्टार्स पर हो, क्रिकेट स्टार्स पर हो, मनी पर हो, पैसे पर हो, पोजीशन पर हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो, कहाँ हो मेरी दृष्टि? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। ये भी नहीं उन्होंने मांगा कि सतत आपका दर्शन कर सकें, उन्होंने कहा दृष्टि सताम दर्शने, ऐसे लोगों के दर्शन में लगे रहे जो आपके भक्त हैं, बस ये वह आशीर्वाद दीजिए। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनु नाम, कि सदैव आपके भक्तों का हम दर्शन कर सकें। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है और ये मन को वश में करने की, इंद्रियों को वश में करने की बड़ी सरल विधि है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इच्छाएं समुद्र में गिरती जाती हैं, नदियां समुद्र में गिरती हैं, इच्छाएं ऐसी हों हमारे मन में, इच्छाएं आए लेकिन हम विचलित ना हों। जैसे एक बड़े आचार्य हैं यमुनाचार्य, वो कहते हैं कि जब से मेरा मन श्री कृष्ण में लगा है, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदो, जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा है, मुझे अगर कोई विचार भी आ जाता है बुरा विचार तो मैं थूक देता हूं, मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, मैं थूक देता हूं, क्या बेकार विचार आ गया। तो इसी तरह कृष्ण कह रहे कि अगर विचार आए भी भले नदियों की तरह आए लेकिन मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये लक्षण, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनको भगवान कहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि उसका ध्यान क्या होना चाहिए, तो इसकी चर्चा अगले सोमवार को करेंगे। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं ये कि भक्त के क्या लक्षण हैं, तो अगले सोमवार को इस चर्चा को जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबसे विनती है कि अभी रथ यात्रा महोत्सव आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें सेवा में भाग लें, बहुत सारी सेवाएं हैं मंदिर में। और आप सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मंदिर आना आप शुरू करें अगले 7-8 दिनों में, ताकि जो भी सेवाएं हैं उनमें आप भाग ले सकें। और इस रविवार को आपको याद दिलाएं, हम लोग मंदिर मार्जन की सेवा करने वाले हैं, सब लोग मिलकर मंदिर पूरा आसपास सब साफ सफाई होगी। तो इसीलिए वैसे भगवान ने तो अपनी योजना अपना प्रारंभ कर ही दिया, रोड बनवाना शुरू कर दिया उन्होंने, अभी तक नहीं बन रही थी तो भगवान ने सोचा ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, मैं ही बनवा देता हूँ, तो पता नहीं कैसे बुद्धि दी तो आज रोड बनना शुरू हो गई। तो मतलब रथ यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, रोड बन रही है, हम लोग फिर साफ सफाई करेंगे तो सजावट करेंगे। तो आप सब लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बिताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समय नहीं है इसीलिए प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, और अभी भगवान के दर्शन और कीर्तन होंगे, फिर उसके बाद आप सब प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण।
Yeah.